एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
सबसे महान है तेरा धर्म, ऊंचे पर्वत के समान है तेरी करुणा, तेरी सच्चाई सबसे महान है तेरा धर्म, ऊंचे पर्वत के समान है। यहोवा परमेश्वर तू है, यीशु तू है, मसीहा मेरा खुदा। यहोवा परमेश्वर तू है, यीशु तू है, मसीहा जाऊं मैं दूर कहीं, थक के मैं जाऊं जहां सिवा मेरा कोई नहीं। यीशु मिले जहां जाऊं वही यहोवा परमेश्वर, तू है यीशु, तू है मसीहा मेरा खुदा। सबसे महान है तेरा धर्म, ऊंचे पर्वत के समान है यहोवा परमेश्वर।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम आज उसका वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों से सीखना सुनना चाहते हैं। पिता, हमें तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, मेरे श्रोताओं के संग हो पिता। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें दे कि वे तेरे वचनों को समझ सके, तेरे बातों को सीख सके और तेरे राह में चल सके। उन्हें बहुतायत से आशीष दे। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है दृष्टांतों में शिक्षा। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, वे लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते थे। वे लोगों को स्वर्ग के बारे में दृष्टांतों के द्वारा सिखाया करते थे। अंग्रेजी का दृष्टांत शब्द पैराबल इब्री शब्द मसाल से आती है, जिसका अर्थ होता है तुलनात्मक, लौकिक, कहावत। आमतौर पर पैराबोल का अर्थ होता है प्रकार, आकृति, प्रतीक, चित्रण, दृष्टांत। शाब्दिक रूप से एक चीज दूसरे के साथ तुलना के लिए रखना। दृष्टांत एक साहित्य प्रयोग या यंत्र है जहां एक छोटी कहानी, चाहे सत्य या बनावटी, जो नैतिक या आत्मिक सच्चाई दर्शाती है। सुसमाचारों में दृष्टांत एक कहानी है जो कोई आत्मिक सच्चाई के साथ तुलना करने के लिए साथ साथ रखा जाता है। मसीह के दृष्टांत शिक्षण में वही सिद्धांत देखा जाता है जो दुनिया के लिए उनके अपने मिशन में देखा जाता है, ताकि हम उनके दिव्य चरित्र और जीवन से परिचित हो सकें। मसीह ने हमारा स्वभाव लिया और हमारे बीच निवास किया, ईश्वरत्व मानवता में प्रकट हुआ, अदृश्य महिमा दृश्यमान मानव रूप में। मनुष्य ज्ञात के माध्यम से अज्ञात के बारे में जान सकते थे। स्वर्गीय चीजें संसारिक के माध्यम से प्रकट हुई। ईश्वर मनुष्यों की समानता में प्रकट हुआ। ऐसा ही मसीह के शिक्षण में था। अज्ञात को ज्ञात द्वारा चित्रित किया गया था। दिव्य सत्य संसारिक चीजों द्वारा, जिनसे लोग सबसे अधिक परिचित थे। पवित्र शास्त्र कहता है ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांतों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। यह हम पढ़ते हैं मत्ती 13:34-35, जो लिया गया है पुराना नियम भजन संहिता 68:2 से। प्राकृतिक चीजें आध्यात्मिक के लिए माध्यम थी। प्रकृति की चीजें और उसके श्रोताओं के जीवन अनुभव लिखित शब्द की सच्चाइयों से जुड़े थे। इस प्रकार प्राकृतिक से आध्यात्मिक साम्राज्य की ओर ले जाते हुए मसीह ने दृष्टांत सत्य की श्रृंखला की कड़ियां हैं, जो मनुष्य को परमेश्वर से और पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ती हैं। प्रकृति से अपनी शिक्षा में मसीह उन चीजों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें उनके अपने हाथों ने बनाया था और जिनमें वे गुण और शक्तियां थी जो उन्होंने खुद दी थी। अपनी मूल पूर्णता में सभी सृजित चीजें ईश्वर के विचार की अभिव्यक्ति थी। अपने अदन घर में आदम और हवा के लिए प्रकृति ईश्वर के ज्ञान से भरी हुई थी, जो दिव्य निर्देशों से भरपूर थी। बुद्धि ने आंखों से बात की और हृदय में ग्रहण की गई, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के साथ उनके सृजित कार्यों में संवाद किया। जैसे ही पवित्र जोड़े ने परम प्रधान के नियम का उल्लंघन किया, ईश्वर के चेहरे की चमक प्रकृति के चेहरे से गायब हो गई। यह विचित्र लगता है कि पवित्र जोड़े ने पाप किया और ईश्वर के चेहरे की चमक प्रकृति के चेहरे से चला गया या गायब हो गया। इससे पता चलता है कि मनुष्य और प्रकृति कितने जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने प्रकृति मनुष्य के लिए बनाए हुए थे और उन्हें उसकी रखवाली करने के लिए कहे थे। पृथ्वी अब पाप से खराब और अपवित्र हो गई है, फिर भी अपनी खराब स्थिति में भी बहुत कुछ सुंदर बचा हुआ है। ईश्वर के वस्तु पाठ मिट नहीं गए हैं। सही ढंग से समझा जाए तो प्रकृति अपने निर्माता के बारे में बात करती है। मसीह के दिनों में इन शिक्षाओं को नजरअंदाज कर दिया गया था। मनुष्य ने परमेश्वर के कामों में परमेश्वर को पहचानना लगभग बंद कर दिया था। मानवता की पापमयता ने सृष्टि के सुंदर चेहरे पर एक पर्दा डाल दिया था और परमेश्वर को प्रकट करने के बजाय उसके काम एक बाधा बन गए जो उसे छिपाते थे। मनुष्य ने सृष्टिकर्ता से ज्यादा सृष्टि की पूजा और सेवा की। इस प्रकार बुतपरस्त अपनी कल्पनाओं में व्यर्थ हो गए और उनका मूर्ख मन अंधकारमय हो गया, जैसे हम पढ़ते हैं रोमियो 1:25-21 में। इसलिए इसराइल में मनुष्य की शिक्षा को परमेश्वर की शिक्षा के स्थान पर रखा गया था। न केवल प्रकृति की चीजें बल्कि बलिदान, सेवा और खुद शास्त्र, जो सभी परमेश्वर को प्रकट करने के लिए दिए गए थे, इतने विकृत थे कि वे उसे छिपाने का साधन बन गए। मसीह ने सत्य को अस्पष्ट करने वाली हर चीज को हटाने का प्रयास किया। पाप ने प्रकृति के चेहरे पर जो पर्दा डाल दिया है उसे हटाने के लिए वे आए। एक तरफ खींचकर उस आत्मिक महिमा को सामने लाना जिसे दर्शाने के लिए सभी चीजें बनाई गई थी। उनके शब्दों ने प्रकृति के साथ साथ बाइबल की शिक्षाओं को एक नए पहलू में रखा और उन्हें एक नया रहस्योद्घाटन बनाया। यीशु ने सुंदर शोषण के फूल तोड़े और उसे बच्चों और युवाओं को उनके हाथों में दे दिया। और जब उन्होंने अपने पिता के चेहरे की धूप से तरोताजा उसके युवा चेहरे को देखा तो उसने यह शिक्षा दी, मैदान के शोषण के फूलों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं। प्राकृतिक सुंदरता की सादगी में वे ना तो मेहनत करते हैं ना ही वे काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र नहीं पहने हुए था। इसके बाद मधुर आश्वासन और महत्वपूर्ण शिक्षा मसीह ने दी। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भट्टी में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। पहाड़ पर उपदेश में ये सब बच्चों और युवाओं के अलावा दूसरों को भी कहे गए थे। ये शब्द भीड़ से कहे गए थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं भी थे, जो चिंता और उलझनों से भरे हुए थे और निराशा और दुख से व्याकुल थे। यीशु ने आगे कहा, इसलिए यह मत सोचो कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब चीजों की तलाश में रहते हैं। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। फिर उसने अपने हाथ आसपास की भीड़ की ओर फैलाते हुए कहा, परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। मत्ती 6:28-33। इस प्रकार मसीह ने उस संदेश की व्याख्या की जो उसने स्वयं मैदान की लिली या शोषण और घास को दिया था। वह चाहता है कि हम इसे हर शोषण और घास के हर अंकुर में पढ़ें। उसके शब्द आश्वासन से भरे हुए हैं और परमेश्वर पर भरोसा करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। मसीह का सत्य के प्रति दृष्टिकोण इतना व्यापक था, उनकी शिक्षा इतनी विस्तृत थी कि प्रकृति के हर पहलू को सत्य को दर्शाने में लगाया गया था। जिन दृश्यों पर हमारी नजर रोजाना टिकी रहती है वे सभी किसी ना किसी आध्यात्मिक सत्य से जुड़े हुए थे। इसलिए प्रकृति को गुरु के दृष्टांतों से सजाया गया है। अपनी सेवकाई के आरंभिक भाग में मसीह ने लोगों से इतने स्पष्ट शब्दों में बात की थी कि उसके सभी श्रोता सत्य को समझ सकते थे जो उन्हें उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाता, लेकिन कई लोगों के दिलों में सत्य ने जड़ नहीं पकड़ी थी और इसे जल्दी ही पकड़ लिया गया था। इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बात करता हूँ, उसने कहा, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और ना ही समझते हैं, क्योंकि इन लोगों का हृदय मोटा हो गया है और उनके कान सुनने में भारी है और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। मत्ती 13:13-15 में हम यह पढ़ते हैं। मत्ती 13:13 को हम पाते हैं व्यवस्था विवरण 29:4 में और इर्मिया 5:21 में और यहेजकेल 12:12 में और मत्ती 13:14-15 को हम पाते हैं यशायाह की किताब उसका 6:9-10 में। यीशु जिज्ञासा जगाना चाहते थे। उन्होंने जगाने की कोशिश की, लापरवाह लोगों को समझाए और दिल पर सच्चाई की छाप छोड़े। दृष्टांतों की शिक्षा लोकप्रिय थी और यहूदियों के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के लोगों का भी सम्मान और ध्यान आकर्षित करती थी। शिक्षा का इससे अधिक प्रभावी तरीका और कोई नहीं हो सकता था। यदि उसके श्रोताओं को ईश्वरीय चीजों का ज्ञान चाहिए होता तो वे उसके शब्दों को समझ सकते थे, क्योंकि वह हमेशा ईमानदार जिज्ञासु को उन्हें समझाने के लिए तैयार रहता था। फिर मसीह के पास प्रस्तुत करने के लिए सत्य थे जिन्हें लोग स्वीकार करने या समझने के लिए तैयार नहीं थे। इसी कारण से उसने उन्हें दृष्टांतों में भी सिखाया। अपने शिक्षण को जीवन अनुभव या प्रकृति के दृश्यों से जोड़कर उसने उनका ध्यान आकर्षित किया और उनके दिलों को प्रभावित किया। बाद में जब उन्होंने उन वस्तुओं को देखा जो उसके पाठों को दर्शाती थी तो उन्हें दिव्य शिक्षक के शब्द याद आ गए जो मन पवित्र आत्मा के प्रति खुले थे। उनके लिए उद्धारकर्ता की शिक्षा का महत्व अधिक से अधिक प्रकट हुआ। रहस्य स्पष्ट हो गए और जो समझना कठिन था वह स्पष्ट हो गया। यीशु ने हर दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा। विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों का उपयोग करके उन्होंने न केवल सत्य को उसके विभिन्न चरणों में प्रस्तुत किया बल्कि विभिन्न श्रोताओं से अपील भी की। उनकी रुचि उनके दैनिक जीवन के परिवेश से खींचे गए चित्रों द्वारा जगाई गई। जिसने भी उद्धारकर्ता को सुना उसमें से कोई भी यह महसूस नहीं कर सकता था कि उन्हें उपेक्षित या भुला दिया गया था। सबसे नम्र सबसे पापी ने उनकी शिक्षा में एक ऐसी आवाज सुनी जो उनसे सहानुभूति और कोमलता से बात करती थी। आज वही उद्धारकर्ता है जो हम सबों को भुलाता है। वह हम सबों को प्यार करता है। वह हम सबों को स्वर्ग का रास्ता दिखाता है। वह कहता है कि परमेश्वर तुम सबों से प्रेम करता है और तुम्हें बचाना चाहता है। वह कहता है कि चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारा ख्याल करता है। तुम पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज कर और तुझे वे सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी। यीशु मसीह का यह वचन आज हमारे लिए आशीष से भरा हुआ है। आइए हम उसके निमंत्रण को सुने और उसके पास आए। आइए हम अपने हृदय को उसके लिए दे दे कि वह इसे प्रेम से भर देगा और आत्मिक आशीष और भरोसा और आश्वासन से भर देगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता। हम सबों को तू स्वीकार कर, हमारे मनों को तू तेरे आत्मा से भर दे, तेरे वचन से भर दे। जब हम अपने दिलों को तेरे सामने खुले हुए लेकर आते हैं तू अपना बुद्धि से भर दे और हमें तेरा रास्ता में चला पिता। हम तेरे सम्मुख समर्पित होते हैं। हम सबों को तू आशीष दे और तेरे राज के लिए तैयार कर। हमारे पापों को क्षमा कर दे। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@advent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।